आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के श्रीकांत वर्मा पीठ द्वारा श्रीकांत वर्मा का साहित्यिक अवदान विषय पर 25 मई 2022 दिन बुधवार को सिम्स ऑडिटोरियम बिलासपुर में एक आयोजन किया गया। ये आयोजन श्रीकांत वर्मा जी के अवसान दिवस पर आयोजित किया गया था। प्रथम सत्र के मुख्य वक्ता लखनऊ के नरेश सक्सेना जी, दिल्ली के विनोद भारद्वाज, भोपाल से गीत चतुर्वेदी, दुर्ग से जयप्रकाश जी थे। सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर संजय अलंग ने की। कार्यक्रम का संचालन अंबिकापुर के महेश शर्मा ने किया। ये हैं गीत चतुर्वेदी भोपाल से।
कविताएं उठाएं और अखबारों में लेख की तरह, ध्यान दीजिए, कविता की तरह नहीं बल्कि लेख की तरह छपने के लिए भेज दिया। और मजे की बात है कि उनमें से कई कविताएं लेख की तरह अखबारों में छप भी गईं। नबोकब के आसपास किंवदंतियों का एक बहुत बड़ा माया जाल है। हो सकता है कि यह भी मात्र एक किंवदंती हो, लेकिन इतना तो जाहिर है कि कई सारी राजनीतिक कविताएं अपने स्वभाव और विन्यास में कविता नहीं लगती बल्कि एक तात्कालिक अखबारी राजनीतिक टिप्पणी लगती। इधर की हिंदी कविता में ऐसी कविताएं बहुतायत में हैं। क्यों? क्योंकि श्रीकांत वर्मा के बाद की पीढ़ियों ने श्रीकांत वर्मा की कविताओं से बहुत कम सीखा है। हिंदी में राजनीतिक कविता लिखने का अर्थ है राजनीतिक पार्टियों की कविता लिखना, राजनीतिक विचारधारा में बंटी कविता लिखना। एक कवि की राजनीति पार्टियों की राजनीति और विचारधाराओं की राजनीति से कहीं आगे की राजनीति होती है, और ये बात हमें श्रीकांत वर्मा से बेहतर कौन सिखा सकता। बहुत सारे कवि लेखक राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। खुद श्रीकांत वर्मा भी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी कविताएं उस पार्टी के राजनीतिक घोषणा पत्र का काव्यात्मक अनुवाद नहीं है। ये बात पार्टियों से जुड़े सारे राजनीतिक कवियों के बारे में नहीं कही जा सकती। श्रीकांत वर्मा की कविताएं राजनीतिक हैं लेकिन वे तात्कालिक नहीं हैं। उनकी कविताएं किसी सुविधाजनक राजनीतिक निष्कर्ष तक पहुंचने की जल्दबाजी नहीं करती हैं। कई बार तो वे निष्कर्षहीन होना प्रिफर करती हैं बजाय अपने पाठक को एक जल्दबाज निष्कर्ष देने के, जैसा कि रिवायत है। हिंदी में श्रीकांत वर्मा जैसे कवि पे पर्याप्त हमले हुए। उन्होंने इनका जवाब भौतिकता से दिया, लेकिन तमाम टुच्ची राजनीति से तंग आकर उन्होंने एक दिन कहा, मेरी बहस स्थानीय लोगों से नहीं है, मेरी बहस सीधे सार्थ से। और ये किसी आहत कवि द्वारा उच्चारित कोई दम्भोक्ति नहीं थी बल्कि सच में श्रीकांत वर्मा के यहाँ एक विरल वैश्विक बोध। गंगा और जमुना के बीच जैसे सरस्वती अदृश्य होकर भी अस्तित्व में रहती है, उसी तरह श्रीकांत वर्मा के यहाँ राजनीति और कविता के बीच फिलॉसफी अदृश्य होकर भी बहती रहती। उनकी एक कविता है प्रजापति, उसमें चार पंक्तियां ऐसे हैं। द्रोणाचार्य इन्हें मत सिखाओ धनुर्विद्या, द्रोणाचार्य इन्हें मत सिखाओ धनुर्विद्या, ये सत्य के लिए नहीं सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। कितनी गहरी दृष्टि है। सारी लड़ाइयां सत्ता के लिए होती हैं, चाहे रणभूमि पे लड़ी जाएं या विचार के स्तर पे, सबको सत्ता चाहिए। और यहाँ कवि चाहता है लड़ाई हो। मुक्तिबोध ने पूछा था, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? मुक्तिबोध ने पूछा था, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? श्रीकांत वर्मा जैसा कवि दो टूक और बेलाग जवाब देते हुए कहता है, कवि की पॉलिटिक्स यही है, सत्ता नहीं सत्य चाहिए। सत्ता के लिए लड़ेंगे तो सत्य पीछे छूट जाएगा। तो ये सत्य क्या है और कहाँ है? क्या ये सत्य वाम में बैठा है या ये सत्य दक्षिण में बैठा है? ठीक यहीं में मुझे श्रीकांत वर्मा की एक और कविता याद आती है, तीसरा रास्ता। इसकी पंक्तियां हैं, मित्रों दो ही रास्ते, दुर्नीति पे चलें, नीति पे बहस बनाए रखें, दुराचरण करें, सदाचार की चर्चा चलाए रखें। मित्रों तीसरा रास्ता भी है मगर वो मगध, अवंती, कौशल या विदर्भ होके नहीं जाता। श्रीकांत वर्मा के यहाँ यदि तीसरा रास्ता है, ये सत्य का रास्ता। मगध, अवंती, कौशल या विदर्भ, ये साम्राज्यों के नाम हैं। साम्राज्य का अर्थ है सत्ता। श्रीकांत वर्मा कितनी संकेतों में कह देते हैं ये तीसरा रास्ता सत्ता से होके नहीं जाता। राजनीतिक होने के बावजूद श्रीकांत वर्मा हिंदी के विरल सत्यान्वेषी कवि हैं, सत्याग्रही कवि हैं। उनकी कविता इसी तीसरे रास्ते की तलाश की कविता है। इसी तलाश में वो बेचैन रहती है। इसी कारण बाज दफा इस कविता का रक्तचाप बढ़ा हुआ प्रतीत हो। सत्ता के सान्निध्य में रहने के बाद भी श्रीकांत वर्मा के भीतर ये बेचैनी, ये नाराजगी। जिस समय हिंदी फिल्मों में एंग्री यंग मैन नहीं था, एक नाराज नायक नहीं आया था, उससे पहले ही श्रीकांत वर्मा हिंदी साहित्य में एक नाराज कवि की भूमिका अपना चुके थे। जिन वजहों से भी नाराज थे, वे वजहें अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। आज हम विचलन से भरे एक बदचलन समय में जी रहे हैं। ऐसे में श्रीकांत वर्मा की कविताएं बार बार याद आती हैं। उनकी कुछ पंक्तियों को पढ़ते हुए मन में एक ख्याल आता है कि क्या सच में 1970-1980 के दशक की पंक्तियां हैं। दुनिया के कई अन्य कवियों की तरह श्रीकांत वर्मा की ये कविताएं, ये पंक्तियां पुरानी क्यों नहीं पड़ जाती? क्यों ऐसा लगता है कि श्रीकांत वर्मा ने अपनी राजनीतिक कविताएं दरअसल 21वीं सदी के मनुष्य और समाज और राजनीति के बारे में लिखी थी? सुनिए, देखिए उन्हीं के शब्दों को। मैं फिर कहता हूँ, उनकी कविता, मैं फिर कहता हूँ, धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, मगर मेरी कोई नहीं सुनता, हस्तिनापुर में सुनने का रिवाज है। दूसरी कविता है, कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि कहीं मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। कितनी खूबसूरत कविता। एक और है, एक बार शुरू होने पर कभी नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगधवासी हो तुम, कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा ये प्रश्न करके हस्तक्षेप करता है कि मनुष्य क्यों मरता। श्रीकांत वर्मा की कविताओं का मर्म समझने के लिए इस शब्द को मंत्र की तरह याद रखना होगा। वो शब्द है हस्तक्षेप। जो कुछ मिला है उसे बदल देने के लिए हस्तक्षेप। उनकी कविताओं में एक अकेले आदमी का संघर्ष है, संघर्ष का अवसाद भरा अकेलापन है, लेकिन अपने काम में दूसरे को शामिल करने में, दूसरे को समाविष्ट कर लेने की आकांक्षा उनमें गहरी थी। उनकी एक और पंक्ति सुनिए, नांदी पाठ कविता से है ये पंक्ति। श्रीकांत वर्मा कहते हैं, अगर मैं आपको स्वर न दे सकूं, अगर मैं आपको स्वर न दे सकूं तो आप मुझे स्वर दीजिए। इसे पढ़ते ही, इस पंक्ति को पढ़ते ही विनोद कुमार शुक्ल की वो पंक्ति याद आ जाती है कि जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊं। और श्रीकांत वर्मा कहते हैं, अगर मैं आपको स्वर न दे सकूं तो आप मुझे स्वर दें। ये जो पंक्ति है ये विनोद कुमार शुक्ल की काव्य पंक्ति की पूर्वज पंक्ति जान पड़ती। पंक्तियों के मामले में श्रीकांत वर्मा अत्यंत समृद्ध हैं। उर्दू कवियों की तरह चुटीली है उनकी जबान के चढ़ जाने वाली पंक्तियां हैं उनके पास। जैसे पूछती है सैयदा जिंदगी का क्या किया, पूछती है सैयदा जिंदगी का क्या किया। अगर कोई आके मुझसे यही सवाल पूछे कि जिंदगी का क्या किया तो मुझे कोई जवाब नहीं छूटेगा, ऐसा खालीपन बिखरा हुआ है हमारे लिए। और श्रीकांत वर्मा इसी खालीपन के भूगोल का वर्णन करते हैं, खालीपन के इतिहास का चित्रण करते हैं। खालीपन का, शून्यता और निरर्थकता का इतिहास, प्रश्नों से अकुलाया हुआ और उत्तर न मिलने से बौखलाया हुआ इतिहास। मगध, कौसाम्बी, कपिलवस्तु, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, श्रावस्ती, लिच्छवी, हस्तिनापुर, नालंदा, मिथिला, कोशक, कन्नौज, भूगोल नहीं है बल्कि पतन गाथाओं का अंतहीन इतिहास है। और श्रीकांत वर्मा के यहाँ ये सब इतिहास के बहाने वर्तमान के पाखंड की पड़ताल। श्रीकांत वर्मा खुद कहते हैं एक जगह, मेरी पिछली कविताओं में भूगोल था, मेरी नई कविताओं में काल होना चाहिए और काला सीत होना चाहिए, मगर ये काल इतिहास वाला काल या कालखंड नहीं है बल्कि वो काल है जो इतिहास को जन्म देता है और फिर उसे लील लेता है। श्रीकांत वर्मा की कविताओं के संदर्भ में इस काल के दो अर्थ, एक तो सच में इतिहास वाला काल जो कि हमें उनकी तमाम कविताओं में ऊपर की सतहों पर दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ काल का अर्थ है मृत्यु। श्रीकांत वर्मा का लेखन मृत्यु बोध से भरा हुआ है। उनका गद्य, उनकी डायरी बाकायदा एक शोक गीत की तरह हमारे भीतर गूंजती है। यूरोपीय ऑपेरा के मध्य पतली नगण्य सी आवाज में मृत्यु का गीत गाती किसी अदृश्य देवी की तरह उनके यहाँ मृत्यु की रागिनी बजती, ये उनकी कविता को करुण बनाता है। इतिहास बोध काल बोध में बदलता है, काल बोध फिर मृत्यु बोध में बदल जाता है। और सिर्फ कवि को ही नहीं बल्कि हर मनुष्य की आकांक्षा होती है कि वो किसी तरह बचा रह जाए। श्रीकांत वर्मा के भीतर भी ये आकांक्षा है, लेकिन वो रोहिताश्व की तरह इसे भी नकार देते हैं। एक कविता में वो कहते हैं, चाहता तो बच सकता था, चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। जाहिर सी बात है श्रीकांत वर्मा यहाँ कुछ और बोल रहे हैं। वो बच निकलने वाले कवि नहीं थे बल्कि रच निकलने वाले कवि थे। उनकी इन्हीं पंक्तियों को आधार बना के हम एक नई पंक्ति कह सकते हैं, जो रचेगा वही बचेगा। श्रीकांत वर्मा ने रचा इसलिए वो बचे हुए हैं हमारे और आपके भीतर। हमारी रचना में उनका बचना बना हुआ है, हमारी वाणी में उनकी बनक का मुहावरा गूंजता है, हमारी वाणी में उनकी बनक का मुहावरा गूंजता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।